फिरौन, शद्दाद, नमरूद जैसे बड़े बड़े दावेदारों ने भी ये नहीं कहा था कि आसमान मैंने बनाया, ज़मीन मैंने बनाई, क्योंकि वो तो उनसे पहले बनी हुई थी। असल में सब जो दावे करते हैं ना, वो कहते हैं हमारी बात मानो, हमें बड़ा मानो। तो अल्लाह ताला ने आगे हक और बातिल की बात करके हमें ईमान को बढ़ाने वाली कुछ दुआएं सिखाई, 93 से 98, यहाँ सूरत अपने एंड की तरफ जा रही है। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि ईमान को बढ़ाने के लिए दुआओं की कितनी ज़रूरत है। और रब्बी मा तुरियन्नी मा युअदून, ऐ मेरे रब, अगर तू दिखा दे वो चीज़ जिसका वो वादा दिए जा रहे हैं, फिर मुझे उस जालिम कौम में ना करना। यानी नबी कह रहे हैं कि अगर इन पे इनके गलत कामों की वजह से अजाब आ गया तो मुझे ना इसमें पकड़ना। हमें भी ये दुआएं याद करनी चाहिए कि अल्लाह, अगर तुझे किसी वक्त गुस्सा आ गया और तूने किसी के कुफर, किसी के फिस्क या किसी रिबेलियसनेस की वजह से कोई पकड़ लाया, कोई जलजला आ गया, कोई तूफान आ गया, तो मुझे वहाँ से हटा लेना। और आगे बड़ा खूबसूरत सा असूल है, इत्फा बिल्लती ही या अहसन, दूर कर दो अच्छी चीज़ के साथ बुरी को। हम क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो, अल्लाह कहते हैं ईंट का जवाब फूल से दो। हमें पता है आपको दुख होता है, नहनु आलमु बिमा यसिबून, हमें पता है ये लोग आपके खिलाफ जो काम कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं। हमें ज़िंदगी में कभी कभी शक हो जाता है, बल्कि यकीन होता है कि फ़ुला मेरा दुश्मन है, फ़ुला मेरे पे जादू कर रहा है, फ़ुला मेरा घर तोड़ना चाहता है, फ़ुला मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करता है। छोटी मोटी चीज़ें ज़िंदगी में चलती हैं, इस जुमले को याद रखिए, जो करना है कर लो, मेरा रब बड़ा है। और जब ये वसवसे आए तो वक़ुर रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, इसको याद कर लीजिए। शैतानी वसवसों से और शैतान के शर से बचने की ये दुआ है कि अल्लाह मैं शैतानी वसवसों से बचती हूँ। आप कहते हैं कि शैतान को सिर्फ हमारे ऊपर जो एक इख्तियार है ना, वो वसवसा डालने का, जैसे एक जरासीम बस जिस्म में घुस जाए बाकी काम खुद ही हो जाता है। आप अगर वसवसों से खुद को बचा लें, दिन रात कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक को शऊर के साथ पढ़ते रहें, और ज़रा सी किसी इंसान के बारे में भी कोई गलत बात आपके दिमाग में आए ना, फ़ौरन पढ़ लें औज़ु बिल्लाह, ये मैं क्या सोच रही हूँ, क्या हो गया मुझे, क्यों बेकार मैंने अपने दिमाग को रद्दी की टोकरी बनाया। देखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें खुद होता है, दूसरे को पता भी नहीं, और आप जल रहे हैं और कुड़ रहे हैं और परेशान हैं। तो ज़िंदगी में किसी भी इंसान से आपको कोई खौफ है, कोई ख़तरा है, कोई आपसे जेलस है, आप ये दुआ मांगिए, अल्लाह की रहमत से आपको सुकून आ जाएगा। फिर उसके बाद गाफिल इंसान की हैरतनाक मौत, आयत 99 से 100, और ये आखिरी रुकू बहुत ही ज़्यादा इंसान के दिल को हिला देता है। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, ज़रा सा इमेजिन कीजिए, सारी ज़िंदगी गफलत रही, कितने पैगाम आए, हैया अलल सलाह के, नहीं उठे नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह की, कितनी पुकारें आईं, अच्छे कामों की तरफ आओ, कम टू गुड डीड्स, कितने अच्छे अच्छे फ्लायर मिले, यहाँ कुरान हो रहा है, यहाँ रुहुल कुरान हो रहा है, यहाँ दौरे कुरान हो रहा है, यहाँ सबीलुल जन्ना हो रहा है, सुना भी नहीं कहीं, किसी ने कहा तरावी पढ़ लो आ जाओ, किसी ने कहा हज पे चलते, सारी ज़िंदगी बस पीछे करता गया। और अब एक ऐसा पैगाम आ गया जिस पे वो नो नहीं कह सकता, और वो मलकुल मौत की तरफ से मौत का पैगाम है। अब क्या कहेगा, काला रब इरजिउनी, ए मेरे रब मुझे वापस लौटा, आई वॉन्ट टू गो बैक टू दुनिया, लअल्ली अअमलु सालिहन, मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, फी मा तरक्तु, जो मैंने छोड़े हुए थे या जिसको मैं छोड़ के आ रहा हूँ, यानी मुझे दुनिया में वापस भेज तो मैं वो अच्छे अच्छे काम करूँ जो छोड़े हुए थे। सोचिए, हमने तो नहीं कुछ अच्छे अच्छे कामों की नियतें की हुई और उनको पूरा नहीं किया। जवाब सुन लीजिए, कल्ला, नेवर, हरगिज़ नहीं, ये बहुत कलमा बोध है, नेवर, ये नहीं होगा। क्या, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो एक बात है जिसको तू कह रहा है, मतलब यह है कि अगर तुझे वापस भेज भी दिया जाए ना तो फिर भी नहीं करेगा। और आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, कभी बीमार हुए और बिस्तर पे कितने खुद से वादे किए, एक दफ़ा अल्लाह मुझे ठीक कर दे, मैं ऐसे हो जाऊंगी वैसे हो जाऊंगी, और क्या हर साल रमज़ान में हम कितनी नेकियां की नियतें नहीं करते, उम्रे पे जाकर कितनी नियतें की, दुनिया में आते फिर खो जाते हैं। यही बात है कि अगर मौत के बाद भी वापस आ जाएं, ये फिर भी वही काम करेंगे जो करते थे। वमिन वराइहिम बरज़ख़, ये है अज़ाब-ए-क़ब्र की दलील, बरज़ख़ का वक्त कब्र का वक्त है। क्या अब इनके आगे तो एक पर्दा है, इला यौमियो बासून, दोबारा उठाए जाने के दिन तक। और फिर आगे आयत 101 में क्या पता चला, क़यामत के दिन रिश्तेदारियाँ काम नहीं आएंगी। हैं रिश्तेदार वहाँ मौजूद, लेकिन काम नहीं आएंगे, क्योंकि हर बंदे को अपनी फिक्र लगी होगी। फैज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर, जब सूर में फूंक दिया जाएगा, फला अंसाब बैनहुम, कोई नसब, कोई नाता, कोई रिलेशन, कोई सोशल टाई उनमें बाकी नहीं रहेगी। यौम इज़िन उसिन वला यतसाअलून, और न वो एक दूसरे से पूछे जाएंगे। आज दुनिया में हम कितना गिला करते हैं, आपने पूछा ही नहीं। खुदा ना खास्ता किसी के घर कोई मौत हो जाए और कोई जाए ना, तो क्या कहते हैं, लो जी वो तो उस वक्त भी नहीं आए। हाय मैं इतनी बीमार थी, मेरे भाई ने आके पूछा ही नहीं। हाय मेरी नंद ने नहीं पूछा, मेरे फलाने ने नहीं पूछा। अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन से बड़ी तकलीफ, गम, बीमारी किसी पे ना आई, और उस दिन कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा। क्या पता चला, सबसे बेन्यास होके नेकियां करो, क्योंकि क़यामत के रोज़ फैसला आमाल के वजन पर होगा। आयत 102 से 108 में अल्लाह ताला ने आमाल को अच्छे नेकियों से भरने की दावत दी। फमन सकुलत मवाजीनुहू फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिनके पलड़े भारी हो गए वो फलाह पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के हो गए बस यही लोग हैं जिन्होंने खुद को भी खसारे में डाला, और वो जहन्नुम में हमेशा रखे जाएंगे। चाट लेगी उनके चेहरों को आग, और वो उसमें मुंह बिगाड़े होंगे। ये जो लफ्ज है ना काली होन, ये क्या है? साहबी ने कहा कलूह क्या है, बकरे की भुनी हुई सिरी देखिए, दांत उसके बाहर आ जाते हैं, खाल सारी जल जाती है। फरमाया जहन्नुम की आग लोगों की ये कैफियत कर देगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। जुर्म क्या था? अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या नहीं आती थी मेरी आयतें तुम पर जो पढ़ी जाती थी और तुम उसको झुटलाते रहते थे। आप नोट करें कितना कुरान को और आयतों को झुटलाने का तज़किरा आ रहा है सूरत में, क्योंकि इतने पारे पढ़ने के बाद अब हमें भी तो कुछ इल्म आ गया ना, कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। तो क्या पता चला कि जो मालूम है उस पर अमल करना है। क़यामत के जो 5 सवाल हर एक ने जवाब देना, उसमें एक ये है मा जामिला बिमा अल्लमा, कि जो इल्म मिल गया था उस पर अमल कितना किया। तो इसका ये नहीं मतलब कि अब इल्म लेना छोड़ दें, इसका मतलब यह कि जो बात पता चल जाए उस पर अमल करने लग जाएं। उनका जुमला देखिए हसरत से भरा हुआ, कालू रब्बना ग़लबत अलैना शिकवतुना, ए हमारे रब हमारी बदबख्ती हम पे गालिब आ गई, और हम तो बड़े बहके हुए लोग थे। ए हमारे रब हमको निकाल इसमें से, फिर अगर हम दोबारा यही करें तो हम बड़े जालिम हैं। जवाब सुनिए, काल अख्सऊ फीहा, धुतकारे पड़े रहो इसी में, और वला तुकल्लिमून, मुझसे बात ना करो। एक्सा कहते हैं कुत्ते या सुअर को धुतकारना। कभी रात चलते पीछे कुत्ता लग जाए ना, तो पत्थर उठाकर इंसान उसको मारना जाता है। इस कैफियत को अरबी में एक्सा कहते हैं। और जो जुमला देखिए आप एंड वाला, ला तुकल्लिमून, आज ना मुझसे बातें करो। क्यों? दुनिया में जब तुम्हें मौका दिया था तुम नहीं करते थे, अपने दुख सुख लोगों को सुनाते थे, रब को नहीं सुनाते थे। और जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहा होता है। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं। मुराद है कि नमाज और कुरान से तो तुम्हें मोहब्बत नहीं थी, और एक बड़ा जुर्म इनका क्या था, उसका जिक्र है आयत 109 से 114 में, तुम नेक लोगों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हें इसकी सजा मिल गई। इन्नहु काना फरीक मिन इबादी, और मेरे बंदों में से एक ऐसा गिरोह था जो कहता रहता था कि हमारे रब हम ईमान लाए फिर हमें बख्श दे और हम पे रहम कर, और तू सब रहम करने वालों से अच्छा। यानी ये अच्छी दावत देते थे, अच्छी बात करते थे, तुमने क्या किया, फतखज़्तुमूहुम सिखरिया, तुमने इनका मजाक उड़ाया, किसी को मौलवी का, किसी को कुछ कहा, कुछ कहा, हत्ता अंसौकुम ज़िक्री, यहाँ तक कि तुम्हें मेरी याद भी भूल गई। तुम ये भूल गए कि ये बंदा तुम्हें बुलाता किसकी तरफ है। देखिए ना, जो आपको अल्लाह की तरफ बुलाए, जो अल्लाह से जोड़े, तो वो शख्स बीच में से निकल कर आपका और अल्लाह का मामला बन जाता है। लिहाजा वकुन तुम मिनहुम तदहकून, तुम उनसे हंसते थे, मौकरी, फन, ये किया जी, आज तो मैंने फलां साहब की दुर्गत बना दी और ये कुछ कर दिया, अल्लाह को ये सब नहीं पसंद। और उन्होंने तुम्हारी इन गलत चीज़ों पे जो सब्र किया, इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू, मैंने उनको उनके सब्र पे जजा दी, इन्नहुम हुमुल फाइजून, वो कामयाब है। सूरत के शुरू में क्या था? कद अफलहल मोमिनून। अब आखिरी रुकू में क्या आ रहा है? हुमुल फायजून। फलाह और कामयाबी, इसके लिए अरबी जुबान में फायज, फायजा, फौज, ये सारे लफ्ज भी आते हैं। और इसी तरह से मुफलिक, फलाह, फलाहा भी है। कामयाबी के मुख्तलिफ दर्जे हैं। फिर अल्लाह उनसे सवाल करेगा, कम लबिस तुम फिल अर्दी, तुम दुनिया में रहे कितनी देर हो? अदद सिनीन, सालों का हिसाब लगा के बताओ। अब क्या कहना चाहिए कि 60 साल रहे, 70 रहे, मेरी 80 की उम्र थी, 90 की थी? नहीं, कालू लबिस न यौमन औ बाद यौम, वन और लेस देन वन, एक या एक से भी कम दिन रहे। फसल आदीन, अब गिनने वालों से पूछ भी लीजिए। अल्लाह कहते नहीं, काल लबिस तुम इल्ला कलीला, नहीं रहे तुम मगर बहुत थोड़ा। लो कुन तुम तालमून, हकीकत यह है कि आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया बहुत थोड़ी है। 40, 50, 60 साल की भी अगर ज़िंदगी है और इसके बाद एक हमेशा की आखिरत है, कितना समझदार है वो बंदा। थोड़े से साल अल्लाह की रज़ा के साथ गुजार ले, सब्र कर ले, अल्लाह की दी हुई पाबंदियों को खुशी से निभा ले, हमेशा की खैर। आप अपने बच्चे को कहते हैं, बेटा पढ़ लें, आपके मेडिकल के एग्ज़ाम है। मामा नहीं पढ़ना, अच्छा बोर है, ये शादी पे जाना है, दावत में जाना है, ये करना वो। आप क्या कहते हैं, बेटा थोड़ा सा रह गया पढ़ लो, फिर सारी उम्र कमाओगे, फिर सारी उम्र तुम आराम करोगे। तो एक बच्चा इम्तिहान के दिनों में कई चीज़ें छोड़ देता है। तो दुनिया क्या है? इम्तिहान है, और हम सब कमरे इम्तिहान में हैं। तो लिहाजा अक्लमंद कौन है कि अल्लाह की नाफरमानी की चीज़ों को पीछे डाल दे। और उसके बाद 115 से 117 पहाड़ों को हिला देने वाली आयतें। हदीस से हमें पता चलता है कि कई जिन्नात जल गए थे जब एक सहाबी ने एक आसेब ज़्यादा शख्स के कान में ये आयत पढ़ी थी। पूरा वाकया है, आप तफसीर में से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। यानी ये वो आयतें हैं कि जिन्नात भी इसकी ताप नहीं ला सकते। अफा हसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा, ज़रा सा इस पे गौर कीजिए। सबको पीछे करके अपने अंजाम को सामने रखते हैं हम। और दो सवाल आते हैं इस आयत में, क्या हमने तुमको अबस पैदा किया, बेकार पैदा किया, पर्पस लेस पैदा किया? कोई मकसद नहीं है तुम्हारे जीने का। क्या जानवरों की तरह सिर्फ खाने पीने और घर बनाने और बच्चे पैदा करने को तुम ज़िंदगी का मकसद समझते हो? क्या इन बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बनाना? क्या इन घरों में अच्छे काम नहीं करने? क्या कमाई में हलाल और हराम का फ़र्क नहीं देखना? ये पहला सवाल है हर उस शख्स के लिए। और मैं आप और अपने लिए एक जुमला बोलती हूँ, जब भी आपको मौका मिले इस बात को सुनने के बाद, कागज़ कलम हाथ में लीजिए और लिखिए, मेरे जीने का मकसद क्या है? हम देखते हैं कि दुनिया में छोटे से छोटे काम का भी मकसद होता है। आप दिन में 10 दफ़ा फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो मकसद से खोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं खोलते। तो क्या इतनी बड़ी दुनिया और आपके लिए मेरे लिए अल्लाह ने इतना कुछ बनाया, इसका कोई मकसद नहीं? सिर्फ लोग आते रहे और खाते रहे और अपनी उम्र पूरी करके जाते रहे, गलत तरीका है। मकसद है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। सूरह ज़ारियात में पढ़ेंगे कि इंसानियत के नाते से मकसद रब का बंदा बनने में, उसकी बंदगी में। और दूसरा सवाल इससे भी खतरनाक है, खुद से कीजिए, मैं अपने आप से करती हूँ, अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम हमारी तरफ वापस नहीं लाए जाओगे? ये नहीं कहा कि तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे, वापस आना और बात, और एक होता है कान पकड़ के लाया जाता है। क्या कल तुमने मेरा सामना नहीं करना? विल यू नॉट फेस मी? क्या मैं और आप अल्लाह को मिलने के लिए तैयार हैं? क्या मुंह दिखाएंगे? फिर आगे अल्लाह ताला की तारीफ़ के कलिमात हैं, क्या पता चला कि इंसान कभी तो बैठकर सोचे। ज़िंदगी में जब आप एक बड़ा मकसद लेते हैं ना, आप परेशान होते हैं, आपके से बोर होने को टाइम नहीं, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। अगर आप में से किसी को भी किसी लम्हे फील होता है ना, मैं डिप्रेस हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे पे एंग्जाइटी है, मैं परेशान हूँ, आज से अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद चूज़ कर लें, आप देखेंगे आप उसके अंदर ऐसे बिजी हो जाएंगे आपको याद ही नहीं रहना आप बीमार हैं कि नहीं है। खुद पे रहम खाने वाले मत बनिए, अपने आप को अल्लाह का एक मास्टरपीस समझते हुए ज़िंदगी गुजारिए। फिर आगे मगफरत और रहमत की दुआ पे सूरत पूरी होती है, वकुर रब्बि ग़फ़िर वरहम वअंता ख़ैरुर राहिमीन, के आप कह दीजिए कि मेरे रब बख्श दे और रहम कर, और बेशक तू रहम करने वाला है सबसे अच्छा। यानी ये आयत जो है, ये इसके अंदर आपको मिल गई किस चीज़ में, कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए एक खूबसूरत पैगाम रखा, और एंड पे फिर ला युफ्लिहुल काफिरून 1:11 के ऊपर अगर आप देखें, कुफर के साथ ना शुक्री के साथ लोग कामयाब नहीं होंगे, तो क्या पता चला कि कद अफलहल मोमिनून था और ला युफ्लिहुल काफिरून। शुरू सूरत में बेहतरीन बात और एंड पे बदतरीन बात। अल्लाह आपको मुझे इन सारी बातों पे गौर व फिक्र और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।